آپ ہیں ایس بی ایس ہندی کے ساتھ اور خبروں کے لیے جائیں sbs.com.au/hindi پر۔
دیویا وجے کی کہانی الگوزے کی دھن پر۔ وہ میرے عین سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ کچھ روز پہلے اس کا فون آیا تھا کہ چند دنوں بعد وہ میرے شہر آ رہی ہے۔ فون اٹھاتے ہی ادھیکار کے ساتھ اس نے کہا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے، اور میں جانے اس کی کون سی بات کے وشیبھوت ہو جھٹ سے ہاں کہہ بیٹھی۔ تتپشچات خود کو خوب جھڑکا کہ کیوں حامی بھر لی۔ کتنی بار سوچا منع کر دوں، کچھ بھی کہہ سکتی ہوں کہ یکایک باہر جانا پڑ گیا، اتوا مہمان آ گئے ہیں، یا سیدھے سیدھے ہی کہہ دوں گی کہ نہیں ملنا چاہتی۔ آخر بلات تو وہ مجھ سے نہیں مل سکتی، پرنتو کداچت میں سوئم بھی اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ جس دن سے سنا وہ آ رہی ہے، مجھے اشانتی نے گھیر لیا تھا۔ نہیں جانتی تھی یہ ویاکلتا اسے دیکھنے کی ہے اتوا چاہ کر بھی اس سے اداسین نہ رہ پانے کی۔ نیت تیتھی سے ایک دن پہلے ہی اس کا پھر فون آیا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ وہ گھر پر نہیں، باہر ملنا چاہتی ہے، سمبھو ہو تو کسی ادیان میں، اور میں پنہ ہاں کہہ بیٹھی تھی۔ مجھے سوئم کے اوپر کرودھ آیا کہ کیا کارن ہے میں اس کی ہر بات کو سویکار کر رہی ہوں، کیوں اس کے سامنے میری چیتنائیں شونیہ ہو جاتی ہیں، کیوں میں اس سے کوئی پرشن نہیں کر پاتی۔ پرنتو اب جھنجھلاہٹ کا کیا ارتھ، نرنے لیا جا چکا تھا، دوسرے دن وہ آنے والی تھی۔ اگلے دن میں ادیان کے پرویش دوار کے نکٹ اس کی پرتیکشا کر رہی تھی۔ یہی نشچت کیا گیا تھا کہ دوپہر 1 بجے ہم ادیان کی انٹری پر ملیں گے، پرنتو وہ اب تک نہیں پہنچی تھی۔ 1:20 ہونے کو آئے تھے۔ میں من ہی من کڑھ رہی تھی کہ کیسی لاپرواہ ہے، دیری ہو گئی تو کوئی جواب دہی تو بنتی ہے، کیا اسے فون کروں؟ فون بک میں نمبر ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ وہ این میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میں اسے کچھ کھن اپلک دیکھتی رہی۔ کیا اسی کے لیے میرے پریمی نے مجھے چھوڑا ہے؟ کیا اچھا لگا ہوگا اس میں؟ ہاں، اس کی آنکھیں خوبصورت ہیں، بہت بڑی نہیں پر آکرشک، جنہیں کاجل کی ریکھا نے اور بھی سروپ بنا دیا ہے۔ اس کے لمبے بالوں کو وہ اوشیہ پسند کرتا ہوگا، اور اس کے ہونٹ کتنا سندر آکار ہے۔ ان ہونٹوں سے جب یہ اسے چھوتی ہوگی تو کیا اسے معلوم ہوا ہوگا کہ وہ پہلے میرے ہونٹ چھو چکا ہے؟ میرے ہونٹوں کا سواد اس کے ادھروں میں اب بھی شیش ہوگا؟ چھی، میں بھی کیا سوچتی ہوں۔ نمستے، میں سوپنا ہوں اور آپ انویشا ہیں نا؟ میں پھر سوچ میں پڑ گئی، یہ مجھے آپ کہہ کر کیوں پکار رہی ہے؟ سمبھوتہ میری بڑی عمر کا بودھ مجھے کروانا چاہتی ہے، آخرکار پرش بھی تو بہدا چھوٹی استریوں کو ہی وریتا دیتے ہیں۔ پرنتو بڑی ہوں تو کیا ہوا، کہاں کم لگتی ہوں؟ آج بھی مجھ سے چھوٹی عمر والے لڑکے مجھ پر آسکت رہتے ہیں۔ کتنا سا انتر ہوگا، یہی کوئی 4-5 کا۔ آپ اتنی مون کیوں ہیں؟ آپ کی ناراضگی جائز ہے، میں سمجھ سکتی ہوں۔ سپنا میری چپی سے اسمنجس میں تھی، سور بھی مدھر ہے۔ کیا پریم کا اظہار کرتے ہوئے اس کی آواز میں مادکتا بھر جاتی ہوگی؟ کیا وہ انماد سے تر اسی سور کا دیوانہ ہوا ہوگا؟ اپنی سوچ کو ویرام دے میں بولی، نہیں ناراض کیوں ہوں گی بھلا، نہیں تو ملنے ہی کیوں آتی؟ سپنا مسکرا دی، ایک ٹھہری ہوئی سرلتا سے بھری ہوئی ابودھ مسکان۔ اس کی مسکان میں میرے لیے ویانگ تھا یا دھیا بھاو، پرنتو نہیں، اس کی مسکراہٹ نراپراد تھی۔ پھر یہ مجھ سے ملنے کیوں کرا پہنچی، جانتے ہوئے کہ کبیر اس کے پورو میرے ساتھ؟ اس کے پیچھے کہیں دونوں کی کوئی ابھیسندھی تو نہیں؟ آپ بے حد خوبصورت ہیں، سپنا نے پیار سے کہا تھا۔ میں نے تیکشن نظروں سے اسے دیکھا، چاہتی کیا ہے یہ لڑکی، اتنی پرشنسا کیوں کر رہی ہے؟ کداچت کہنا چاہ رہی ہے کہ سندر تو ہوں پر اس سے کمتر ہوں، تبھی تو کبیر مجھے چھوڑ کر اس کے پاس چلا گیا۔ اتنے سمے سے سنچت کی ہوئی پیڑا سگھن سوروپ میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ چلیں، سپنا کی آواز مجھے وچاروں سے باہر کھینچ لائی تھی۔ میں ہاں میں گردن ہلا آگے بڑھ گئی۔ ادیان کی نرم گھاس پر چہل قدمی کرتے ہوئے اوچک سپنا نے میرا ہاتھ تھام لیا، آپ نے سندر چوڑیاں پہنی ہیں۔ میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے واپس لینا چاہتی تھی کہ مجھے پرتیت ہوا میرے پریے نے بھی سپنا کا ہاتھ پکڑا ہوگا۔ مجھے آبھاس ہوا جیسے سپنا کے مادھیم سے میں کبیر کے اسپرش کو آتمسات کر رہی ہوں۔ میرا ہاتھ شتھل پڑ گیا جسے سپنا دیر تک تھامے رہی۔ اس کے ہاتھ نرم ملائم تھے۔ میں نے گردن گھما کر سپنا کو دیکھا، مجھ سے چھوٹی، عمر میں بھی، قد میں بھی، شریر ذرا بھرا ہوا پر چال میں آتم وشواس اور چہرے پر غضب کا لاونیہ۔ اگر میں پرش ہوتی تو اس سے ضرور پریم کر بیٹھتی، پرنتو اگر میں پرش ہوتی تو کیا میں سوئم سے پریم نہیں کر بیٹھتی؟ اوہ کاش ابھی کہیں سے درپن آ جاتا، میں ہم دونوں کے پرتیبمب دیکھتی، دیکھتی کہ ایک پرش کو کیا پسند آتا۔ انویشا، میں آپ کا نام لے کر بلا سکتی ہوں نا؟ مجھے اپنی اور دیکھتے ہوئے سوپنا نے پوچھا۔ मैंने हमेशा की तरह हाँ में सिर हिला दिया। इतनी बड़ी नहीं मैं तुमसे कि तुम नाम न ले सको, यूं भी आजकल नाम लेने का चलन है, तुम नाम ही लो। वो खुलकर हंस दी थी। कैसी बेझिझक हंसी थी, शायद छोटी उम्र में ऐसी ही हंसी फूटती है। मैं क्यों बार बार उम्र का हिसाब लगा रही हूँ? उम्र से तो नहीं, पर लगता है मैं मन से बुढ़ा गई हूँ। कुल जमा 28 की तो हूँ। दरअसल बात उम्र की नहीं, अपने प्रेमी का दुलार पाती कोई भी लड़की ऐसी ही हंसी हंसेगी। मैं एकाएक स्वयं के प्रति करुणा से भर गई। मन का आवेग आंखों के रास्ते बह जाने को आतुर हो उठा। तभी स्वप्ना के हाथ का कसाव मेरे हाथ पर बढ़ गया। क्या वो मेरे मन की स्थिति समझ गई है? जो भी हो, मुझे इस लड़की के आगे दुर्बल नहीं पड़ना। अपनी पीड़ा को पीछे धकेल मैं फिर मुस्कुरा दी। आइए यहां बैठते हैं। बेंच को छोड़ स्वप्ना पेड़ की ओर संकेत कर रही थी, जहां लाल सफेद फूल छितरे पड़े थे। मेरा मन फिर उखड़ने लगा। मैंने स्वप्ना की ओर देखा, वो भी यकायक मौन हो चली थी। क्या वो भी मेरी भांति अपने प्रारब्ध को लेकर अनिश्चित होगी? मैं आपके लिए कुछ लाई हूं। मेरी तंद्रा को तोड़ते हुए उसने अपने बड़े पर्स से चमकीली लाल पन्नी में लिपटा हुआ एक पैकेट निकाला। आपकी पसंद मालूम नहीं थी तो अपनी ही पसंद का कुछ ले आई। अरे ये लड़की भी, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहा। सच कहूँ तो सोचा भी नहीं ऐसे रिश्ते में उपहार भी दिया जा सकता है। कितनी व्यवहारिक सोच है। मैं उससे प्रभावित हो रही थी। क्या सोच रही हैं, खोलिए ना। उफ, कितनी बेसब्र है। खैर, उत्सुकता तो मुझे भी हुई थी कि मेरे लिए क्या ले आई होगी, पर ऊपर से मात्र इतना भर कह रही थी इसकी आवश्यकता नहीं थी। ज़रूरत तो हमारे मिलने की भी नहीं थी। छोटी और बेसब्र लड़की से प्रौढ़ा झांकी थी। तरतीब से लाल पन्नी हटा मैंने एक और रखी और मेरे हाथ में था मार्केज का उपन्यास लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा। किताब? क्या कबीर ने बताया होगा मुझे किताबें पसंद हैं? मेरे चेहरे की हैरानी शायद उसने पढ़ ली थी। आपके खत पढ़े थे मैंने, वहीं से पता चला आपको किताबें पसंद हैं। कहते हुए उसके चेहरे पर चोरी करते पकड़े गए बच्चे से भाव आ गए। कबीर ने अभी मेरे खत संभाल कर रखे हैं, सुनकर मुझे अच्छा लगा। परंतु स्वप्ना और वो इतने निकट हैं कि कबीर को उससे मेरे खत छिपाने की आवश्यकता भी महसूस नहीं हुई। सोचकर एक उदासी ने ढांप लिया मुझे। खत हृदय में होने वाले स्पंदनों का लेखा जोखा होते हैं। वो खत उन दिनों के एहसासों का रोजनामचा थे। क्या सब कुछ पढ़ लिया होगा इसने? उसे मेरे चेहरे पर कुछ दिखाई दिया होगा। वो मेरा हाथ थामे कहने लगी, एक दिन फाइल में वे खत मुझसे टकरा गए थे। वे खत मात्र शब्द भर नहीं थे, वे पूरा व्यक्तित्व थे, और उस व्यक्तित्व की स्वामिनी से मिलने को मेरे अंदर की स्त्री ललक उठी थी। उस आवाज़ में ईर्ष्या का पुट था, विजयी भाव या सिर्फ कौतूहल कहना कठिन था। क्या वो कबीर को बताकर आई होगी या चोरी से मुझसे मिलने आ पहुंची है? मैं पूछना चाहते हुए भी नहीं पूछ पाई। अब ज़रूर पढ़िएगा इसे। हाँ ज़रूर, मैं किताब उलट पलट रही थी। एक तरफा प्रेम के मुकम्मल होने की कहानी थी, पर मेरा और कबीर का प्रेम तो दोनों ओर से था, फिर भी पूर्ण न हो सका। दूसरे शहर में जा बसने पर आवश्यकताएं भी बदल जाती होंगी। फिर से एक मौन पसर गया था हमारे बीच। कुछ खास कहने को नहीं था, या इतना कुछ था कि उसे शब्दों में समेटना मुश्किल था। सर्दियों की ऐसी दोपहर अरसे बाद आई थी। इस तरह पेड़ के नीचे धूप सेंकते हुए कॉलेज के वक्त मैं कबीर के साथ बैठा करती थी। फिर वो मुंबई चला गया, और मेरी जिंदगी से भी। उन बातों को अब कितने साल बीत गए हैं, और किसी और जन्म की बात लगती है। अगर कबीर मुंबई नहीं जाता तो? सफ़ेद दुपट्टे को स्कार्फ की तरह सर पर लपेटे शून्य में ताकती वो नक्काशीदार बुत लग रही थी। अचानक मन हुआ उसे छूकर देखूं, उसके बालों की महक सांसों में भर देखूं। कबीर उन्हें ज़रूर सहलाता होगा। उसकी पीठ उघाड़ देखूं कि कबीर के दांतों के निशान वहां हैं। कबीर ने उसे कहां कहां छुआ होगा? उसने एकाएक पलटकर मुझे देखा। क्या उसे मन की बातें सुनने का हुनर था? उसने अपना बैग खिसका कर जगह बनाई और मेरी गोद में सर रखकर लेट गई। कितनी बेलौस है ये लड़की। मेरे हाथ खुद बखुद उसके माथे को सहलाने लगे। अब मैं गौर से उसका जायजा ले सकती थी, पर नहीं, वो स्वप्ना नहीं, मैं थी। उस एक पल में कबीर हो उठी और वो मेरी गोदी में लेटी मैं। मेरे मन ने चाहा बरसों की उदास मुझको ढेर सारा प्यार करूं। उसकी आंखें मुंद गई थीं। मैंने झुककर उसकी आंखें चूम ली। उसके होठों पर एक मुस्कान खिलाई। अब बिल्कुल कबीर की तरह। हाँ, कबीर की तरह। वो कहता था आंखों में तितलियां रहती हैं, उन्हें बहुत नाजुकी से छूना चाहिए कि कहीं वो उड़ न जाएं। मैंने सोचा, क्या कबीर इसे भी ऐसा कहता होगा? धूप सर से उतरते हुए दूर जा रही थी। हवा सर्द हो चली थी। पक्षियों का झुंड हमारे सर के ऊपर चहचहाता हुआ गुजर गया। उसने चौंक कर आंखें खोली, फिर मुझे देख एक इत्मीनान उसके चेहरे पर पसर गया। मुझे नजर भर देख मुस्कुराई, फिर उठकर अपने दुपट्टे को सर पर कसकर लपेट लिया। मैंने अपनी शाल का एक छोर उसे पकड़ा दिया, जिसे उसने बेझिझक थाम लिया। अब वो मेरे बेहद गरीब थी। उसने अपने पर्स में से सिगरेट का एक पैकेट निकाला, एक सिगरेट लाइटर से जला, अपने होठों के बीच दबा ली। आह, वही खुशबू, कबीर की खुशबू। उसने मेरी तरफ देखा और मुझे सिगरेट थमा दी। मैं उसे उंगलियों के बीच थामे देर तक देखती रही और वो उससे गिरती राख पर लकीरें खींचती रही। गहरी सांस भर मैंने एक कष्ट लिया और सिगरेट उसे वापस पकड़ा दी, जैसे कबीर को अपने अंदर उतार कर उसे दे दिया हो। उसने सिगरेट बुझाकर वापस पैकेट में रख ली। तुम्हें मेरी चूड़ियाँ पसंद आई थी ना, तुम इन्हें पहन लो, कहते हुए मैंने अपनी चूड़ियाँ उतारी और उसकी कलाई में पहना दी। क्या उसकी आँखें भर आई थीं या मेरी ही नज़र धुंधला गई थी? बागौर उनको देखने के बाद अचानक वो उन्हें खनखनाती हुई बच्चों सी खुश हो गई। मुझे उस पर लाड़ उमड़ाया। क्या खींच लाया इसे मेरे पास, कौन सा बोझ ढो रही होगी ये भी। अंधेरा घिरने लगा था, दरख्तों के साए लंबे हो चले थे। वो अब भी मुझसे सट कर बैठी थी, शॉल का किनारा उंगलियों में लपेटते हुए वो गंभीर हो चली। उसने अब तक अपने आने का सबब नहीं बतलाया था। मैंने उसका चेहरा अपनी ओर घुमाया, मुझे लगा वो मुस्कुराएगी, पर उसके होंठ थोड़े सिकुड़ गए। उसका भरा हुआ स्वर अंधेरे के उस पार से झर रहा था। प्रेम एक अज्ञात द्वीप है जिसकी खोज में हम भटक सकते हैं, एक अजाना एकांत जिसे जीवन भर की तलाश के बाद भी हम पा जाएं ये आवश्यक नहीं। कबीर की बातों में आप नामालूम तरीके से उपस्थित होती हैं, मगर कबीर का रहस्य अब मेरे सामने जाहिर है। अब मैं भी आपको जानती हूँ, उसके गुम हो जाने पर उसे ढूंढ कर ला सकती हूँ, उसने कहा। कहते हुए उसकी बरौनियों पर शरारत और मोहब्बत संग नाच उठी थी। इस बार मुझे ईर्ष्या नहीं हुई, मैं उसे अपलक देखती रही। मैं ऐसी ही दिखती अगर कबीर के साथ होती। उसके गालों के गड्ढे ठठाकर हंस पड़े थे। घर चलो, कितनी देर हो गई, भूख नहीं लगी तुम्हें? उसे अपने हाथों से बना कुछ खिलाने की तीव्र इच्छा हो आई थी। अंग्रेजी में एक कहावत है कि दुश्मनों के घर खाना नहीं खाया जाता। उसकी आंखों की पुतलियां शरारत से जगमगा उठी थीं। क्या हम दुश्मन हैं? मैं हैरत से बोली। हाँ, तुम रकीब हो मगर मुझे बेहद प्यारी हो। उसने पर्स उठाया और आगे बढ़ चली। मैं कब आपसे तुम हो गई थी? हमारे बीच की अदृश्य दीवार का लोप हो गया था। सब कुछ अकस्मात घट रहा था। उस पूरे दृश्य को संचालित करने वाली वही थी। वो जिस तरह अचानक आई वैसे ही जा रही थी। मैं उसे पुकार कर रोक लेना चाहती थी पर मैं जड़ रह गई थी। वो पीछे पलटी, एक कदम मेरी ओर बढ़ाया, हिचकिचाई और अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दिए। मेरे होंठ कांपे थे पर उसके होंठों ने उन्हें समेट लिया था। ओह, ये कैसा एहसास था। हाँ, कबीर की मिठास भी थी इनमें। कुछ पल बाद वो अलग हुई। तुम्हारा स्वाद अब मुझ में घुल गया है, तुम्हें अपने अंदर समेटे ले जा रही हूँ। कबीर के मन का एकांत अब शायद उतना अकेला ना रहे। वो मुस्कुराई और बाहर की तरफ बढ़ चली। मैं उसे जाते हुए देखती रही। मैं किससे मिली थी, कबीर से, सपना से या खुद से? आज का दिन मुझे कुछ देकर गया या वो मायाविनी मुझे ठग कर चली गई थी? उसने बाहर पहुँच कर हाथ हिलाया था। एक पूरा दिन बीत गया था, बेहद अजीब दिन। बरसों का जमा कुछ पिघल कर बह जाना चाहता था। मेरे अंदर का सन्नाटा सघन हो आया था। हम जहाँ बैठे थे वहाँ बड़े फूल मुरझा गए थे। मैंने कुछ क्लांत फूल चुने और घर की ओर लौट चली।
तो दोस्तों, ये थी दिव्या विजय की कहानी अलगोजी की धुन पर। इसी नाम से उनका पहला कहानी संग्रह छपा था। दिव्या हिंदी के उभरते कहानीकारों में एक बड़ा नाम है। पहले कहानी संग्रह से ही उनकी खासी चर्चा हो गई थी और हाल ही में ज्ञानपीठ ने भी उनका एक कहानी संग्रह छापा है। इस वक्त दिव्या मेरे साथ हैं बातचीत के लिए इस कहानी पर और कहानीकार पर। तो दिव्या, आपका स्वागत है SBS हिंदी पर।
शुक्रिया विवेक।
ये बताइए, अलगोजे की धुन पर कहानी कब और कैसे लिखी गई?
ये कहानी मेरी शुरुआती कहानियों में से एक है। मैं थाईलैंड में थी उस समय जब इस कहानी का पहला ड्राफ्ट लिखा गया था। कहानी तो बाद में मुकम्मल हुई। इस कहानी में प्रेम का नजरिया दो रकीबों की दृष्टि से मैंने लिखा है। रकीब से जलन तो स्वाभाविक है और यही ईर्ष्या अन्वेषा को स्वप्ना का इनविटेशन एक्सेप्ट करवाती है। अपने रकीब को देखने की एक छिपी हुई लालसा होती है, खुद के कंपैरिजन में उसे देखने की इच्छा होती है, वही उसे स्वप्ना के पास ले जाते हैं। स्वप्ना जब अपने प्रेमी कबीर की चुप्पी को और उसके एकांत में उसकी पुरानी प्रेमिका की उपस्थिति महसूस करती है तो वो जानना चाहती है उन अनजान हिस्सों को जिसे वो नहीं जानती, उसके अतीत के उन रहस्यों को जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। तो ये जो कहानी है ये रकीब के द्वारा अपने प्रेम के उस विशुद्ध रूप तक पहुंचने की है जहां ईर्ष्या भी किरोहित हो जाती है और प्रेमी को हासिल करने की इच्छा भी, वहां तक जहां बस प्रेम बचा रह जाता है। प्रेमवद भी कहते हैं कि प्रेम का अर्थ है जब तक आत्मा में चमक है जीवन में सार्थकता है। तो उसी चमक और सार्थकता तक पहुंचने की ये कहानी है।
आप कहती हैं कि ये कहानी शुरुआती कहानियों में से है, तो कहानी ने आपको कब खोजा? आपने कब कहानियां लिखना शुरू किया?
कहानियां मैंने लिखना बचपन से ही शुरू किया था। कहानी लिखना सबसे पहले मुझको खुद को एक्सप्रेस करने के लिए मैंने लिखना शुरू किया था, क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। तो मुझे खुद को एक्सप्रेस करने के लिए लिखने से ज्यादा और कोई तरीका नहीं सूझा, लिखने से ज्यादा अच्छा तरीका। और बचपन में मैं अपने नाना के घर जाया करती थी और मेरे नाना एक कवि हैं, कवि थे, वो मुझे पढ़ने के लिए किताबें पकड़ा दिया करते थे। तो वहां से जो मेरा पढ़ने का सफर शुरू हुआ, वहां से मेरा लिखने का भी सफर शुरू होता है। मैंने शुरुआत कविताएं लिखने से की थी, 7 साल की थी जब पहली कविता लिखी। और कहानी मुझे याद पड़ता है कि मैं 4th कक्षा में थी जब कहानी लिखी थी। पहली कहानी बच्चों जैसी कहानी थी और पहली गंभीर कहानी मैंने लिखी थी 12-13 साल की उम्र में, जो कि एक कमरे की संवेदनाओं पर थी कि कैसे कमरे अगर महसूस कर पाते तो वो अपने भीतर रहने वाले मनुष्यों को व्यक्तियों से कैसे जुड़ते और क्या फील करते, उनकी संवेदनाओं से कैसे जुड़ते, वो इस पर ये कहानी थी। यहाँ से जो शुरुआत होती है फिर वो चलती गई। बीच में कहानियां लिखना थोड़ा कम हुआ, लेकिन जब मैं थाईलैंड गई तो वहां पे लैंग्वेज का इतना गैप था, वो लोग थाई बोलते थे, मैं हिंदी और इंग्लिश बोलती थी। वहां पर भी फिर से वही बात आई कि खुद को एक्सप्रेस करने के लिए मैंने फिर दोबारा कहानियां लिखना शुरू किया, या फिर कहानियों ने खुद को मुझसे दिखवा लिया।
तो आप कह रही हैं कि खुद को एक्सप्रेस करने के लिए कहानियां लिखना शुरू किया
जी।
तो यानी आपकी कहानियां आपके निजी अनुभव हैं या कहां आप खोजती हैं उन्हें?
यहां पर मुझे राजेंद्र यादव की एक बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि कहानी ना तो मैं की व्यक्तिगत डायरी होती है ना परिस्थिति की निर्वैयक्तिक रिपोर्टिंग। वो तो किसी विशेष परिस्थिति में मनुष्य के मन और अनुभवों को समझने का प्रयत्न है। तो दरअसल जो अनुभव सामान्य व्यक्ति को केवल भोक्ता बनाकर छोड़ जाते हैं, लेखक को अद्भुत अनुभूतियों से गुजारकर भाव संपन्न बनाते हैं। तो मेरी कहानियां भी सिर्फ मेरा अनुभव नहीं है, डेफिनेटली लेखक है तो अपनी जिंदगी के शेप जरूर आते हैं कहानियों में, लेकिन मेरे जो किरदार हैं बहुत सारे वो मैं इधर उधर से पिक करती हूँ। तो एक सिरा यथार्थ से एक सिरा उठाती हूँ, लेकिन मेरी जो कल्पना है, मेरे अनुभव है, उनसे मिलकर फिर कहानियां बनती हैं।
आपकी कहानियों में मैंने पढ़ा कि मृत्यु बहुत नजर आती है, और जबकि मैंने बहुत सारी कहानियां पढ़ी भी नहीं है, कुछ ही कहानियां पढ़ी, लेकिन मैं देख रहा था कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मृत्यु मौजूद है। क्या इसके पीछे कोई खास वजह है?
नहीं, खास वजह नहीं है। मुझे लगता है कि मृत्यु जीवन का अवश्यंभावी लेकिन अबूझ छोर है। जब कहानी में मानव जीवन के सभी पहलुओं का अध्ययन होता है, मृत्यु भी उन्हीं में से एक है। और मेरी कहानी में मृत्यु बहुत तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ जगह है। मुझे भी कुछ कहानियां याद आ रही हैं, जैसे मगरबी अंधेरे है, महानिर्वाण है, और पहले कहानी संग्रह में भी कुछ कहानियां हैं। तो कहानी में परिस्थितियों के वशीभूत होकर भी और जीवन के महत्व को प्रतिपादित करने के लिए भी मृत्यु मेरी कहानियों में आती है। कोई मृत्यु को जीवन का अंधेरा पक्ष कहे तो भी जीवन उसी अंधकार से आता है। जैसे माँ के गर्भ में ले लीजिए या मिट्टी के नीचे दबे बीज में, सब जगह हम भी रोज आंखों को बंद कर अंधेरे में अगले दिन की जीवन शक्ति अर्जित करते हैं। तो मेरी कहानी में जहाँ भी मृत्यु है वो उसी जीवनी शक्ति के प्रतीक स्वरूप है।
और कहानी का छपना कितना जरूरी है एक लेखक के लिए?
कहानी कला का एक माध्यम है और कला को ऑडियंस चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम नहीं छपे तो लिखना बंद हो जाएगा। छपने से मोटिवेशन मिलता है, हम लिख कैसा रहे हैं ये मालूम चलता है, पाठकों का रिस्पॉन्स पता चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर छपे नहीं तो लिखना बंद कर देंगे हम। वी शुड कीप ऑन राइटिंग अगर हम छपे चाहे ना छपे।
भाषा पर मेरा गौर था आपकी, बहुत फर्क है कई कहानियों में। जैसे अलगोजे की धुन पर की जो भाषा है वो बहुत अलग है दूसरी कहानियों से, तो क्या भाषा बदली है या जब आप कहानी लिख रही होती हैं तब उसके हिसाब से भाषा तय होती है?
यूं अलगोजे की धुन पर मेरी शुरुआती कहानियों में से एक है, लेकिन वैसी भाषा आपको आगे और भी कहानियों में मिलेगी। आपने सरकारी कहानियां नहीं पढ़ी है, भाई मुक्ति भिनचार है उसमें भी लगभग वैसी ही भाषा का प्रयोग है। मेरी कहानियों की भाषा कैरेक्टर्स और भावों के अनुसार तय होती है। धीर गंभीर विषय होता है या कोई उद्देश्य वाली कहानी होती है तो उसकी मांग के अनुसार उसी के अनुरूप भाषा होती है। मैं उसे एफर्ट के साथ नहीं रखती हूँ, बल्कि लिखते वक्त उसी में मूड ढल जाता है और फिर भाषा एफर्टलेस होकर आती है मेरी कहानियों में।
तो कैसे लिखती हैं आप? हमने बहुत सारे विम्स होते हैं लेखकों के, वो रात को लिखते हैं या दिन में लिखते हैं या बैठ कर लिखते हैं या लेट कर लिखते हैं, आपके भी ऐसे कुछ विम्स हैं?
मैं जल्दी उठ जाती हूँ, मुझे जल्दी उठकर लिखना पसंद है। जब सब सो रहे होते हैं तो वो मेरा समय होता है पढ़ने या लिखने का। 1 से 2 घंटा मेरा सुरक्षित है सुबह, और बाद में सबके जाने के बाद मुझे जब घर खाली हो जाता है तब मुझे लिखना बहुत पसंद है। दिन में रात में मैं नहीं जाग पाती हूँ देर तक, मैं जल्दी सो जाती हूँ। बाकी तो जब जैसे जो थॉट आ जाए तब मैं उसे नोट्स में लिख देना पसंद करती हूँ और उसको बाद में फिर मैं डेवलप करती हूँ। ऐसा कोई विम्स नहीं है लेखक का। हाँ ठीक है, बदनाम है अपने विम्स के लिए, पर मेरा ऐसा कोई विम्स नहीं है। मैं आराम से लिखती हूँ जब मुझे थॉट्स आते हैं या फिर मुझे जब वक्त मिल जाता है, और वक्त नहीं मिलता तो वक्त निकाल कर किसी तरह वक्त चुरा कर मैं लिखती हूँ।
चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और बहुत सुंदर कहानियाँ पढ़ने को मिली हैं हमें। उम्मीद है इंतजार रहेगा हमें ऐसी और कहानियों का।
जी शुक्रिया विवेक।
आप जुड़े हैं SBS हिंदी रेडियो के साथ। लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।